लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे अपने घरों का पलायन करने वाले आप प्रवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो युद्ध अथवा भूख के कारणवश खतरों और हिंसा से भरी यात्राएं करने के लिए मजबूर होते हैं, ताकि मेजबान देशों में उन्हें स्वागत सत्कार और नए अवसर मिल सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार देवदूत प्रार्थना के पूर्व रविवार धर्मविधि के पाठों में चिंतन करते हुए कहा कि ईश्वर हमें अपने को स्पर्श करने देते और स्वयं हमारा स्पर्श करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपने रविवार देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta due miracoli che sembrano essere intrecciati fra loro.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज की धर्म विधि का सुसमाचार हमारे लिए दो चमत्कारों का जिक्र करता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। यीशु मंदिर के एक नेता जैरुस के घर की ओर जा रहे होते हैं, जिसकी बेटी बहुत जोर से बीमार थी। रास्ते में एक महिला जो रक्त स्राव से पीड़ित थी उनके वस्त्र का स्पर्श करती है। वे रुककर उन्हें चंगा करते हैं। वहीं हमें बतलाया जाता है कि जैरुस की बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु वहां जाने से नहीं रुकते हैं। वे घर पहुंचते, लड़की के कमरे में जाते और उसका हाथ पकड़कर उठाते और उसे जीवित करते हैं। इन दो चमत्कारों में एक को हम चंगाई और दूसरे को एक नया जीवन देने के रूप में पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ये दो चमत्कार को हमारे लिए एक ही दृश्य में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों में ही हम शारीरिक रूप से एक स्पर्श को पाते हैं। वास्तव में स्त्री यीशु के कपड़ों का स्पर्श करती है और यीशु लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं।
Per quale motivo importante questo toccare?
यहाँ शारीरिक स्पर्श क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए, संत पापा ने कहा, क्योंकि दोनों नारियां अपने में अशुद्ध हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। उनमें एक रक्त स्राव से ग्रसित है तो दूसरी अपने में मृत है। इसके बावजूद यीशु अपने को स्पर्श करने देते और स्वयं एक का स्पर्श करने से भयभीत नहीं होते हैं। इसके पहले कि वे शारीरिक चंगाई के कार्य को पूरा करें, वे झूठे धार्मिक विश्वास को खारिज करते हैं, मानो ईश्वर शुद्ध को अशुद्ध से अलग करते हों। वास्तव में इसके बदले ईश्वर हमारे संग कोई अलगाव नहीं करते हैं, क्योंकि हम सभी उनकी संतान हैं। अशुद्धता हमारे लिए भोजन, बीमारी या मृत्यु से नहीं आती है, वरन अशुद्धता एक अशुद्ध हृदय से आती है। संत पापा ने कहा कि हम इस धर्म शिक्षा को अपने में ग्रहण करें कि शारीरिक और आध्यात्मिक दुख वे घाव जिन्हें हम अपने हृदय में धारण करते हैं, वे परिस्थितियां जहां हम अपने को कुचला पाते हैं, यहां तक कि पापों की स्थिति में भी ईश्वर अपने को हमसे दूर नहीं करते हैं। ईश्वर हमसे लज्जित नहीं होते हैं। ईश्वर हमारा न्याय नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे हमारे निकट आते और अपने को हमारे द्वारा स्पर्श करने देते और हमारा स्पर्श करते हैं। वे हमें सदैव मृत्यु की स्थिति से उठाते हैं। वे हमारा हाथ पकड़कर उठाते और कहते हैं,
Sempre prende per mano per dirci, figlio, figlia, alzati.
पुत्र पुत्री उठो आगे बढ़ो। संत पापा ने कहा, अपने को पापी घोषित करने पर भी ईश्वर हमें अपने प्रेम का आश्वासन देते हैं। मैंने तुम्हारे पापों के कारण सभी चीजों को सहा है, यह अपने में कितना सुंदर है। संत पापा ने कहा कि हम यीशु की छवि जिसे वे हमें देते हैं उसे अपने हृदय में धारण करें। यह ईश्वर है जो हमारे हाथ पकड़कर उठाते और हमें आगे ले चलते हैं। वे हमें हमारी दर्द भरी परिस्थिति में अपने को छूने देते और स्वयं हमें छूते हैं और इस भांति वे पुनः हमें जीवन प्रदान करते हैं। वे हम में से किसी के संग भेदभाव नहीं करते हैं क्योंकि वे हमें प्रेम करते हैं। संत पापा ने कहा, अतः हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर ऐसे हैं? क्या हम अपने को यीशु ख्रीस्त के द्वारा उनके शब्दों और प्रेम से स्पर्श होने देते हैं? क्या हम अपने भाई बहनों के संग अपने को संयुक्त करते और उन्हें उठाने के लिए उनकी ओर अपने हाथों को बढ़ाते हैं, या हम उन्हें अपने से दूर करते और अपनी इच्छा के अनुसार उनका चुनाव करते हैं? हम लोगों को स्तरों में बांटते हैं। संत पापा ने सबों से एक सवाल करते हुए कहा,
Dio, il Signore Gesù, etichetta le persone?
क्या ईश्वर यीशु लोगों को विभिन्न रूपों में बांटते हैं? हम सब इसका उत्तर दें, क्या ईश्वर हमें विभिन्न रूपों में बांटते हैं? क्या हम निरंतर लोगों को विभिन्न स्तरों पर रखते हुए जीवन यापन करते हैं? संत पापा फ्रांसिस ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम ईश्वर के हृदय की ओर देखें, जिससे कलीसिया और समाज में कोई भी परित्यक्त ना हो, ना ही कोई अशुद्ध के रूप में देखा जाए। हम हर व्यक्ति को, चाहे उसका अतीत कैसा भी क्यों ना हो, प्रेम करें बिना भेदभाव के, बिना किसी विभाजन के। हम कुमारी मरियम से निवेदन करें, वे जो कोमलता की माता हैं, हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने पुनः सभों का अभिवादन किया। उन्होंने पोलैंड, कैलिफोर्निया और कोस्टारिका के विश्वासी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। मैं कलीसिया की धर्म बहने धर्म समाज के सदस्यों का अभिवादन करता हूं, जो इन दिनों लोक धर्मियों के संग मिलकर अपनी संस्थापिका पूजनीय ओलिवा बोलांदो के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक तीर्थ कर रही हैं। मैं मांतुआ के निकट गुंजागा के युवाओं का भी अभिवादन करता हूं। संत पापा ने कहा कि आज हम आदि रोम के शहीदों की याद करते हैं। हमारे बहुत से भाई बहनों को विश्व के विभिन्न स्थानों में विश्वास के कारण अलगाव और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, जिसके द्वारा वे कलीसिया को और अधिक फलहित करते हैं। वहीं दूसरे हैं जिन्हें व्हाइट ग्लोब शहादत का शिकार होना पड़ता है। हम उन सबों की याद करें और ख्रीस्त के प्रेम के खातिर दिए जाने वाले उनके साक्ष्य से प्रेरित हों। यीशु के पवित्र हृदय को समर्पित जून महीने के अंतिम दिन में संत पापा ने उन लोगों की विशेष याद की जो युद्ध की चाह रखते हैं, जिससे वार्ता और शांति हेतु उनका मन फिराव हो सके। उन्होंने युद्धग्रस्त देशों यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार के अलावे और भी अन्य स्थानों की याद की, जहां युद्ध के कारण लोगों को बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अंत में संत पापा ने सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित की और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सबों से विदा ली।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Buon pranzo e arrivederci. Grazie.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनलों की एक साधारण परिषद की अध्यक्षता की, जिसने 15 धन्य लोगों को संत घोषित करने की स्वीकृति दी, जिसमें धन्य कार्लो अकुतिस भी शामिल हैं, जो संत बनने वाले पहले मिलेनियम हैं। संत पापा फ्रांसिस के साथ कार्डिनलों का समूह सोमवार की सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में एक साधारण सार्वजनिक परिषद के लिए एकत्र हुआ। संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो ने विचाराधीन 15 धनियों के जीवन और चमत्कारों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह लैटिन में पेरोरासियो से जाना जाता है। इसके बाद परिषद ने मतदान किया और उन्हें संत घोषित करने हेतु अपनी मंजूरी दी। नए संतों का सबसे बड़ा समूह 1860 में सीरिया के दमिश्क में शहीद हुआ। उन्हें दमिश्क के शहीद के रूप में जाना जाता है। इनमें फादर इमानुएल रुइज लोपेस OFM, उनके साथ साथी और तीन मासाबाकी ब्रदर अब्देल मुआती, फ्रांसिस और राफेल, साथ ही तीन मैरोनाइट लोकधर्मी शामिल हैं। सभी 11 धन्य 1860 के सीरियाई गृह युद्ध के दौरान विश्वास के प्रति घृणा में मारे गए थे, जिनमें मुस्लिम मिलिशिया द्वारा ओटोमन सीरिया में हजारों ख्रिस्तियों को मार दिया गया था। पेरोरासियो के अनुसार मासाबाकी भाइयों और 8 फ्रांसिस्कनों की हत्या 9 जुलाई 1860 की रात को की गई, जब वे दमिश्क में फ्रांसिस्कन गिरजाघर के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। 2 इटालियन फादर जुसेपे अल्लामानो और सिस्टर एलेना गोएरा को भी संत बनाने की मंजूरी दी गई। फादर अल्लामानो ने 20वीं सदी की शुरुआती वर्षों में कोंसोलाता मिशनरीज धर्म समाज की स्थापना की। सिस्टर गोएरा ने अपना जीवन लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और 19वीं सदी के अंत में ओब्लेट्स ऑफ द होली स्पिरिट धर्म समाज की स्थापना की। कंसिस्ट्री ने कनाडा में जन्मी एक धार्मिक महिला सिस्टर मेरी लियोनी पेराडिस को संत घोषित करने की मंजूरी दी, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में लिटिल सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली धर्म समाज की स्थापना की। इन 14 संतों के नाम रविवार 20 अक्टूबर 2024 को संतों की सूची में अंकित किए जाएंगे। संत पापा फ्रांसिस और कार्डिनलों के संघ ने यंग जेनरेशन के पहले संत को संत घोषित करने के लिए मतदान किया, जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए थे, जिन्हें आमतौर पर मिलेनियम के रूप से जाना जाता है।
वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार धन्य कार्लो अकुतिस के संत घोषणा समारोह की तिथि अभी तय नहीं की गई है। और संत पापा फ्रांसिस ने जुबली वर्ष की तैयारी में सभी विश्वासियों से ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता और महत्ता को रेखांकित करते हुए आज सोमवार 1 जुलाई को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रार्थना हमारे जीवन का प्रेरक शक्ति है। यह हमारी समस्याओं से दूर एक अमूर्त वास्तविकता की तरह लग सकती है, फिर भी प्रार्थना आवश्यक है क्योंकि हम अपने दम पर बहुत दूर नहीं जा सकते। हम सब शक्तिमान नहीं हैं और जब हम सोचते हैं कि हम सब शक्तिमान हैं तो हम बुरी तरह से विफल हो जाते हैं। हैशटैग प्रार्थना का वर्ष। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष शेवच्युक ने रूसी सेना द्वारा 10 यूक्रेनी कैदियों की रिहाई में उनके अमूल्य योगदान के लिए संत पापा और वाटिकन कूटनीति के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसमें मुक्तिदाता को समर्पित धर्म समाज के 2 सदस्य फादर इवान और वोहदान हेलेटा शामिल थे। दोनों पुरोहितों को 16 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और लंबे समय तक उनके ठिकाने के बारे में कोई खबर नहीं थी। एक्स पर एक पोस्ट में इस समूह की रिहाई की घोषणा करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा, मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मदद की है। मैं कैदियों को मुक्त करने के लिए काम करने वाली हमारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं इन लोगों को घर वापस लाने में परम धर्म पीठ के प्रयासों को भी स्वीकार करना चाहता हूँ। यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख मेजर महाधर्माध्यक्ष शेवचुक ने भी इस तरह की भावनाएं दोहराई। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और पूरे राजनयिक दल को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। कार्डिनल मतेओ जुप्पी, जिन्होंने बार बार 2 पुरोहितों की रिहाई के लिए आह्वान किया था, और यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास को भी विशेष धन्यवाद दिया, जिसमें से प्रत्येक ने, जैसा कि यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है, कैदियों की मुक्ति को संभव बनाने में एक अमूल्य व्यक्तिगत योगदान दिया। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि फादर इवान और फादर बोहदान अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में अपने समुदाय के साथ रहने का विकल्प चुना था और ग्रीक कैथोलिक और रोमन कैथोलिक दोनों समुदायों की सेवा की थी। उन्हें हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उधर यूक्रेन में स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को शोक दिवस की घोषणा की, क्योंकि रूसी मिसाइलों ने कथित तौर पर दक्षिणी यूक्रेन में एक शहर पर हमला किया, जिसमें बच्चों सहित 7 नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। अलग से अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के युद्धग्रस्त पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में और दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में शनिवार को कुल 9 लोग मारे गए। दक्षिणी शहर विलियनियास्क के एक पार्क में प्रत्यक्षदर्शियों ने पिकनिक कंबल के नीचे शवों को फैला हुआ देखा। अधिकारियों ने कहा कि रूसी मिसाइलों से प्रभावित एक इमारत के जले हुए मुड़े हुए अवशेषों के बगल में काली हो चुकी धरती पर गहरे गड्ढे हैं। स्थानीय गवर्नर फेडोरोव ने स्पष्ट किया कि रूसी हमले ने विलियनियास्क में एक या अधिक दुकानों, आवासीय भवनों और एक अनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। विलियनियास्क हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव के पश्चिमी भागीदारों से रूसी हमलों को रोकने के लिए अपनी हवाई सुरक्षा और लंबी दूरी के हथियारों को मजबूत करने का आह्वान किया। यूक्रेन के युद्धग्रस्त पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में अधिकारियों ने कहा कि शनिवार रात को 8 नागरिकों की मौत हो गई और अन्य 14 घायल हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।